Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav. And with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
जी धन्यवाद।
वैभव, चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस।
एब्सोल्युटली, फर्स्ट द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi hails public enthusiasm for GST Bachat Utsav, highlights rise in purchase of indigenous goods. Foreign investors pump in nearly 13,000 crore rupees into Indian capital markets in October so far, and domestic markets to focus on US federal meat outcome, corporate earning results and tariff news for Q's next week.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव के प्रति नागरिकों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अगले सप्ताह घरेलू बाजार, टैरिफ समाचारों, अमरीकी फेडरल रिजर्व की बैठक के परिणाम और कॉरपोरेट आय के नतीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह की भावना पर प्रसन्नता व्यक्त की। आकाशवाणी से प्रसारित अपने संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सभी नागरिकों को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने इस वर्ष के त्योहारों को और अधिक जीवंत बनाने वाली देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके उत्तर में कई नागरिकों ने उन्हें संदेश भेजे। त्योहार के मौसम में स्वदेशी वस्तुओं की जबरदस्त खरीदारी पर भी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि पत्र में सभी से खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी करने के आग्रह पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रधानमंत्री ने भारतीय कॉफी के दुनिया भर में लोकप्रिय होने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कॉफी की विविधता अद्भुत है, चाहे वो कर्नाटक का चिकमंगलूर, कुर्क और हसन हो या तमिलनाडु का पुलनी, शिवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई हो। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर भी कॉफी की खेती में प्रगति कर रहा है, जिससे विश्व भर में भारतीय कॉफी की पहचान और मजबूत हो रही है। वैभव, उड़ीसा से श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
हेलो।
हेलो
जी,
आप अपना सवाल पूछिए।
जी, मैं श्रीकांत बात कर रहा हूँ उड़ीसा भुवनेश्वर से।
जी
जी, सभी को नमस्कार है पहले तो।
नमस्कार।
और सर से, आकाश रस्तोगी सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं एक नए निवेशक हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करूँ, तो आप मुझे ऐसे कुछ सिलेक्टिव अपना म्यूचुअल फंड आपके हिसाब से जो बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इस हिसाब से बताइए सर कि मुझे मार्केट में उतार चढ़ाव की फिक्र ना हो और मेरा पैसा भी कम से कम एफडी और आरडी से तो ज्यादा बढ़े ही। धन्यवाद सर।
श्रीकांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ, इक्विटीज में निवेश करने की तरफ सोच रहे हैं। आप एक फिक्स डिपॉजिट से, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रहा है, उससे आगे बढ़ने की तरफ आप एक एफर्ट लगा रहे हैं। तो शुरुआती तौर के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड ले लीजिए, सेंसेक्स या निफ्टी, दोनों में से कोई सा भी इंडेक्स फंड। बेसिकली जो भी हमारा एक मार्केट इंडेक्स होता है उसको रेप्लिकेट करता है, तो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वही सेम परफॉर्मेंस देगा। एक इक्विटी में निवेश करने के लिए, शुरुआती निवेशक के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। इंडेक्स फंड्स का जो एक खर्च होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही थोड़ा होता है, और वहीं पे यहाँ पे आपको इक्विटी की ग्रोथ भी मिल जाती है और एक रिस्क भी कंपैरेटिवली किसी एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कम होता है। तो आप एक इंडेक्स फंड के साथ शुरुआत कीजिए। शुरुआती तौर पे आप बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइएगा, आप एक जो भी एक कन्वीनियंट अमाउंट आपको लगता है SIP के माध्यम से, जो कि आप हर महीने आराम से साइड में रख सकते हैं, आप उससे शुरुआत कीजिए। आप कुछ 6-7 महीने तक निवेश करिए उससे, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 2-3 महीने के बाद एक बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट उसमें से आप रिडीम करके भी देखें, जिससे कि आपको एक पूरा फुल साइकिल का एक्सपीरियंस हो जाए कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करते हैं, NAV कैसे मैटर करता है, वो कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, रिडिम्शन के टाइम पे कैसे होते हैं, इन्वेस्ट करते टाइम पे कैसा होता है। फिर जब उससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद आप उसमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। और यहीं पे एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि एक इंडेक्स फंड भी है, इनमें जब भी निवेश करें, अपना होराइजन कम से कम 5 साल का रखें। उससे छोटी अवधि के पैसे जो है वो बेहतर रहेगा कि आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी डेट म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें।
Our next call is from Delhi. We are joined in by Keshav. Keshav, welcome to the show. Please ask your question.
नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्राइवेट बैंक में जैसे हमने FD बना रखी है, तो प्राइवेट बैंक वाले ये कई स्कीम लेके आए हैं, और इसमें एलिफ कुछ होता है क्या? एलिफ के नाम से जो आप बता रहे, यूलिफ, सॉरी,
क्या यूलिप्स की बात कर रहे हैं आप?
यूलिफ
जी।
और सर मैं म्यूचुअल फंड में लमसम इकट्ठा अमाउंट अगर करना चाहूँ, पर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। और ये बताइए, मैं अगर 4-5 हजार रुपए, आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, 4-5 हजार रुपए में स्टार्टिंग में देखूं कि कैसे होता है, और बैंक का जो एजेंट होता है जो ये म्यूचुअल फंड के लिए जानकारी देते हैं, वो कहता है कि आप बैठ लीजिए हमारे पास, फिर हम लिख के आपको समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ये ठीक टेक्निक रहेगी या हम म्यूचुअल फंड या उसमें FD में ही बने रहें?
केशव जी, जो आपका सबसे पहला सवाल था, यूलिप, यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरीके का हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, जिसमें कि आपको जब जो बैंक का एजेंट है वो आपको ये कहेगा कि इसमें आपको मार्केट में भी पैसा लग रहा है, एक म्यूचुअल फंड के तरीके से काम करेगा, आप इसमें SIP भी कर सकते हैं, और इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिलेगा, और उसमें आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स पे छूट भी मिलेगी। बट आमतौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए यूलिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे कारगर साबित नहीं होते, ये बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं कंपैरेटिवली, इनका जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और साथ ही में जो एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस किसी भी फाइनेंशियल प्लान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके लिए आप एक प्योर टर्म प्लान लीजिए। तो इन अ नटशेल, मेरी समझ में यूलिप की तरफ आप मत जाइए, आप अपने इंश्योरेंस नीड्स के लिए, जो कि आपकी एनुअल इनकम है, और अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स है, तो उसके लगभग 10 times का एक प्योर टर्म प्लान लीजिए पहले, सबसे पहले, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आप म्यूचुअल फंड्स में एक इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए इक्विटी का, और कम से कम 5 साल का होराइजन रखिए।
मार्केट मंत्र में आपका पुनः अभिनंदन। दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाइब्रिड फंड कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मैंने सुना है एग्रेसिव हाइब्रिड है, और कितने प्रकार के होते हैं? और दूसरा, हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल म्यूचुअल फंड? और तीसरा, प्लीज सजेस्ट सम गुड हाइब्रिड फंड्स फॉर मी। थैंक यू वेरी मच।
दिनेश जी, हाइब्रिड फंड कुल मिलाकर के अंदाजन 7 तरीके के होते हैं, जैसे कि एक आपने नाम लिया अग्रेसिव हाइब्रिड, इसके अलावा एक हमारे पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है, फिर हमारे पास एक डायनेमिक असेट एलोकेशन या जैसे कि होता है बैलेंस एडवांटेज उसको लोग कहते हैं, और फिर एक हमारे पास मल्टी असेट होता है, फिर आर्बिट्राज फंड भी हाइब्रिड कैटेगरी में ही आता है। कुल मिलाकर के 6-7 तरीके होते हैं, बट इन सबकी एक रिटेल इन्वेस्टर को सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो एक कोर मीडियम है वो ये है कि हाइब्रिड फंड यानी कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों का मिश्रण होता है। अब हर कैटेगरी में के हिसाब से रूल्स है, कुछ कैटेगरीज में इक्विटी का झुकाव ज्यादा होता है, कुछ में फिक्स इनकम का झुकाव ज्यादा होता है। जैसे कि आपने खुद अग्रेसिव हाइब्रिड बोला, उसमें बाय मैंडेट जो इक्विटी है वो अराउंड 65-80% का मैंडेट है कि उतना इक्विटी रहेगा ही रहेगा, यानी कि 2/3 आपका इक्विटी रहता है, बाकी का फिक्स इनकम। वहीं अगर हम लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करें तो वहां पे बहुत ही कम, लगभग 15-25% तक के आसपास ही इक्विटी रहता है, बाकी का हमारा फिक्स्ड इनकम में रहता है, तो वहां पे फिक्स्ड इनकम का ज्यादा झुकाव रहता है। तो रही बात कि हाइब्रिड फंड कौन सा अच्छा रहेगा, डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। जितना ज्यादा होराइजन हो उतना ज्यादा हमारे इक्विटी की तरफ झुकाव ज्यादा होना चाहिए, और जितना कम होराइजन हो उतना ज्यादा हमारा फिक्स्ड इनकम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो फिक्स्ड इनकम है वो एक स्टेबिलिटी आता है आपके पोर्टफोलियो में। इक्विटी लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो बहुत वोलेटाइल हो जाता है, उसमें बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे के झुकाव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं। तो पहले बहुत जरूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि आपका जो गोल है वो क्या है, उसके हिसाब से आप हाइब्रिड फंड की सही कैटेगरी चुने, और उसमें आप फिर फंड्स को देख सकते हैं, जो भी उस कैटेगरी के अंदर जो फंड्स है उनका आपस में ही जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो आप कंपेयर कीजिए कि उसके 3-5 ईयर के रिटर्न्स कैसे है, ऑन अ रोलिंग बेसिस रिटर्न्स कैसे है, उनका एक्सपेंस रेशियो कौन सा ज्यादा खर्चा का है, कौन सा कम खर्चा देता है, उसके बेसिस पे फिर आप चुनाव कर सकते हैं।
And I believe there was another question that the advantage and if you would suggest any?
Yeah, so जो बैलेंस एडवांटेज है, जो डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड्स है, उनमें बेसिकली आपका जो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का रेशियो फिक्स नहीं रहता, वो फंड मैनेजर कुछ उनके क्वांटम मेथड्स होते हैं उसके बेसिस पे वो वेरी करता रहता है।
And we have a next caller from Bengaluru. We are joined in by Ayan. And welcome to the show. Please ask your question.
Thank you. मेरा आकार सर से दो क्वेश्चन है। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं बिजनेस साइकिल फंड में SIP करता था एंड वो एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो फंड मुझे पिछले 1-1.5 साल से बहुत वोलेटाइल दिख रहा था जब से मैंने SIP स्टार्ट किया है, और मैं मेरा जो SIP चल रहा है उसमें थीमेटिक का एलोकेशन कम करना चाह रहा था, तो इसलिए सर मैंने वो SIP बंद कर दिया और मैंने नया फ्लेक्सी कैप फंड में और एक मल्टी कैप फंड में मैंने नया SIP शुरू किया है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है ये मैं जानना चाहूंगा। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड के फंड्स को एक गोल ओरिएंटेड तरीके से देखूं कि मेरा क्या गोल है, उसके बेसिस पे मुझे फंड या कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो क्या सर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक रिटायरमेंट फंड में SIP शुरू की जा सकती है? थैंक यू सर।
अयान जी, जो आपका सबसे पहले सवाल था कि बिजनेस साइकिल फंड आपको पिछले 1-1.5 साल में काफी वोलेटाइल लगा है, देखिए बिजनेस साइकिल फंड या कोई भी इक्विटी फंड शॉर्ट टर्म में हमेशा काफी वोलेटाइल आपको दिखेगा, और यही एक रीजन है कि हम लोग कहते हैं कि जब भी इक्विटीज में निवेश करें कम से कम 5 साल का होराइजन रखे, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटीज होती है ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम वो एवरेज आउट होके आपको एक सही रिटर्न दे देती है। आप एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड से ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की तरफ मूव हो चुके, वो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, आप उसमें बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर्स को कोई रुकाव नहीं है कि वो उस कंपनी में निवेश ना करे जिसमें कि वो बिजनेस साइकिल फंड भी कर रहे हैं, तो आपको एनी विच वे वो एक्सपोजर मिल ही रहा है।
वेलकम बैक टू मार्केट मंत्र एंड नाउ वी आर जॉइंड इन by another caller from Faridabad. We are joined in by Devendra. Devendra, welcome to the show. Please ask your question.
Oh, good evening, Market Mantra team.
Ji, good evening.
Mera question ye hai ki ek perfect portfolio ke liye usme kitne mutual fund hone chahiye aur kaun-kaun se hone chahiye?
Dekhiye, Devendra ji, jo perfect portfolio ke liye sabse pehle main kahunga ki kitne fund se zyada zaruri hai ki aap ek apne goal ki pehchan kare और उसके बेसिस पे असेट एलोकेशन का डिसीजन लीजिए। जैसे कि अभी एक पिछले कॉल पे भी क्वेश्चन था कि रिटायरमेंट के लिए, तो वहां पे भी मैं कहूंगा कि गोल से जरूरी होता है कि आप मतलब गोल ओरिएंटेड चलिए, बट गोल ओरिएंटेड से आप ये सबसे पहले देखिए कि आपको कितने टाइम में वो पैसा चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, और उसके बेसिस पे आप एक असेट एलोकेशन प्लान अपना डिवाइस करिए कि कितना आप इक्विटी रखेंगे, कितना फिक्स्ड इनकम रखेंगे। उसके बेसिस पे आप जो है एक फंड की कैटेगरी चुनिए और फिर निवेश कीजिए। तो अगर ज़्यादा समय है तो ज़्यादा इक्विटी की तरफ रहिए, और अगर कम समय है तो थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की तरफ ज़्यादा रहिए, और जैसे जैसे आप गोल की तरफ आते हैं, जैसे जैसे उसके पास आते हैं, वैसे वैसे आप उनका हर साल एक बना लीजिए, मे बी फाइनेंशियल ईयर एंड पे या कैलेंडर ईयर एंड पे, और साथ में उसको रीबैलेंस करते रहिए। वहीं पे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फंड्स में भी निवेश मत कीजिएगा। एक आम तौर पे पोर्टफोलियो के लिए आपके 4 से 6 फंड्स बहुत होते हैं। अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, और बहुत सारे तरह तरह के फंड्स में निवेश करके भी कोई फायदा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो एक शुरुआती तौर के लिए अगर आप डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में जा रहे हो, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, तो 2 नहीं तो 3 फंड बहुत है। और अगर आप अपने फिक्स्ड इनकम नीड्स के लिए भी जैसे म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप 1-2 फंड्स और जोड़ सकते हैं। और अगर बहुत ही, जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो जाते हैं और आपको बहुत ही लंबे समय के लिए पैसे लगाने के रिटर्न्स का बूस्ट देना चाहते हैं, तो एक आध आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड भी उसमें जोड़ सकते हैं।
बिल्कुल आकार, ग्रेटर नोएडा से हमारे पास अगला सवाल आ रहा है। ये सवाल है विनय का। विनय जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग
मैम, आवाज बहुत कम आ रही है
जी। आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज जो है पर्याप्त आ रही है।
मैम, मेरा सवाल ये है कि कोई भी फंड है, म्यूचुअल फंड, और उसकी मैच्योरिटी पे यदि मार्केट क्रेसिस होता है तो उसमें क्या मतलब रिटर्न रहता है?
विनय जी, जो म्यूचुअल फंड्स है, इनका मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इनमें कोई एक मैच्योरिटी डेट नहीं होती फिक्स डिपॉजिट के तरह, प्रोवाइडेड आप एक ओपन एंड फंड में कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली केसेस रहते हैं। वहां पे आपका एनएवी बेस्ड प्राइस चलता है, जो कि आपके जो यूनिट्स है उससे आपके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाती है। और जो सबसे ज्यादा डर है, एक ये जरूर हो सकता है कि मान लीजिए आपने 7 साल के लिए किया और जैसे ही 7 साल पूरे हुए तब मार्केट क्रैश हो गया, तो उसका वैल्यू, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है तो गिर जाएगा। तो वहीं पे एक जरूरत आती है SWP की, जो कि होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये SIP का टोटली ऑपोजिट है। जैसे SIP में हम हर महीने कुछ कुछ पैसे निवेश करते हैं, SWP के माध्यम से हम लोग हर महीने कुछ कुछ पैसे ऑटोमेटिक तरीके में विड्रॉ करते हैं। तो इससे होता है कि जो ये वाला डर होता है कि जब हमारे को एकदम पैसे की जरूरत होगी, जब हमारा गोल ड्यू हो रहा है, अगर तब मार्केट क्रैश हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए जब भी आपका गोल पास आने वाला हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो गोल कितना जरूरी है, कितना नॉन नेगोशिएबल है, आप लगभग 1.5 से 2 साल पहले SWP के माध्यम से वो पैसे थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी फंड में से विड्रॉ करके एक डेट फंड में या बैंक अकाउंट में उसको जमा कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट क्रैश वाला रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा।
मार्केट मंत्र में आपका पुनः अभिनंदन। मुंबई से अगला सवाल आ रहा है कपिल का। कपिल जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
या नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा एक्चुअली एक सवाल है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर। मेरी अभी रिटायरमेंट को 3 साल है और मेरा म्यूचुअल फंड में जो अभी फंड अकुमुलेट हुआ है अप्रोक्सीमेट 12-13 लाख रुपए होगा। तो मुझे बताइए कि मेरे को और इसको कितना इंक्रीज करना है ताकि मेरे को इसी में से ही अपना विड्रॉल भी कर सकूं आफ्टर 3 इयर्स। थैंक यू।
कपिल जी, सबसे पहले आपको ये देखना होगा, आपको एक पेपर पेन लेके बैठिए और आप पूरा एक हिसाब लगाइए कि जैसे आप 3 साल रिटायरमेंट में रह गए, तो उसके बाद जो एक आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट, वो एक्चुअली में कितनी होगी, और उनमें से कितना ऐसा पैसा है कि जो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है या अगर आपको कहीं से पेंशन आएगा तो आपको कितना पेंशन आएगा और कितना आपको ऊपर से पैसा चाहिए होएगा, या फिर अगर आपके कोई और सोर्सेज है, कहीं पे आपने रियल एस्टेट में कर रखा है, वहां पे आपका रेंटल इनकम आना है। सो आपको सबसे पहले ये चीजें थोड़ा सा कैलकुलेट करनी होगी कि आपको एक्चुअली में कितना पैसा आएगा और उनमें से आपको कितना एक मंथली इनकम के लिए उसमें से रिक्वायरमेंट और जनरेट करना है। फिर जो जनरेट करने के लिए आपका पोर्टफोलियो है उसको टोटालिटी में देखिए। आपने बताया कि कुछ सम एक आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है, बट क्या कुछ पैसा आपको ईपीएफ से भी आएगा, वो फिक्स्ड इनकम में होगा। इसके अलावा क्या कुछ पैसा आपका एफडीज में भी है या किसी और पीपीएफ में या किसी और सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में भी है, उस हिसाब से उस पूरे पोर्टफोलियो को देखिए। रिटायरमेंट के बाद भी ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 1/3 30-40% जो है वो इक्विटीज में निवेश करके रखे। एक वही तरीका है जिससे कि जो रिटायरमेंट के जो लेटर ईयर्स है तब के लिए हम लोग एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न और इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको साल भर साल जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से आपकी इनकम एडजस्ट हो पाएगी। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि जितना म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा है वो इक्विटी का, क्या वो आपके पोर्टफोलियो का 30% है, 50% है या क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। बाकी जो सबसे पहले साल का पैसा होगा वो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक लिक्विड फंड में डालिए और वहां से आप SWP सेटअप कर सकते हैं, और उसके आगे लगभग अंदाजन 3 साल का पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में जरूर होना चाहिए।
GST सुधार की विशेष श्रृंखला से लिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। आज हम आपको बताएंगे कि अगली पीढ़ी के GST सुधारों में किस तरह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है।
नए GST सुधार उत्तर प्रदेश के किसानों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों और स्थानीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। खिलौनों और लघु शिल्प वस्तुओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे राज्य के हस्तशिल्प और खिलौना निर्माण समूहों को काफी लाभ मिला है। इसी प्रकार 2500 रूपए तक की कीमत वाले चमड़े के सामान पर केवल 5% GST लगने से अब कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योगों के व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पीतल के बर्तनों पर GST 12% से घटकर 5% करने से MSME की लाभप्रदता को बढ़ावा मिला है और कारीगरों के रोजगार में स्थिरता आई है। वहीं कांच के बने पदार्थ और चूड़ियों पर GST 5% हो जाने से 1 लाख से अधिक श्रमिकों और कारीगरों को रोजगार देने वाले जिले फिरोजाबाद को भी लाभ मिला है। इस कदम से कारीगरों की आय में वृद्धि हुई है। इस बीच पेठे पर GST घटाकर 5% करने से आगरा में पर्यटकों की खरीदारी बढ़ी है और छोटी मिठाई की दुकानों को पैकेज्ड कैंडी के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिली है। इन नए GST सुधारों ने सामर्थ्य रोजगार सृजन को बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया है। रोहन और समर्थ के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 7,329 करोड़ रुपए का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक ऋण बाजार में 5,654 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे समीक्षाधीन अवधि में भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश लगभग 13,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने सितंबर में शेयर बाजारों से 23,885 करोड़ रुपए, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपए और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपए निकाले थे।
After rising for the fourth straight week, the domestic benchmark indices will focus on US Federal Reserve meeting, corporate results, trade tariff developments for Qs next week. Last week, the Sensex and the Nifty gained around 0.3% each. Next week, on domestic front, the market participants are likely to keep an eye on corporate earning results and development around trade and tariffs. Recent reports suggest that US and India are close to finalizing a trade agreement. Union Commerce Minister Piyush Goyal is also visiting Belgium to hold a discussion on proposed free trade agreement with the European Union. On the global front, the Federal Reserve's policy committee is scheduled to meet on October the 28th and 29th. The US Central Bank is likely to reduce the benchmark interest rate to ease borrowing costs. Markets will also likely to track the upcoming US-China presidential meeting. US President Donald Trump today announced that he will raise US tariffs on Canada by 10% in retaliation for an anti-tariff advertisement sponsored by the Ontario government, which was further strained one of the world's largest trade partnerships. The statement posted on Trump's Truth Social account came after several days of public disputes over the ad, which referenced Ronald Reagan's support for free trade and provoked US President's anger.
आकार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।
जी, धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi hails public enthusiasm for GST Bajat Utsav, highlights rise in purchase of indigenous goods. Foreign investors pumping nearly 13,000 crore rupees into Indian capital markets in October so far. And domestic markets to focus on US federal meat outcome, corporate earning results and tariff news for Qs next week. That's it in this edition of Market Mantra.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।